राम राम हरे हरे,
राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण। सबका स्वागत है। कल हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद का समरी डिस्कस किया था, सेकंड कैंटो। 10 अध्याय हैं केवल, और भागवत के 10 विषयों का वर्णन है और चतुर्श्लोकी भागवत है। मुख्य रूप से दूसरे स्कंद में, दूसरे स्कंद का उद्देश्य है, दी मेन पर्पस ऑफ द सेकंड चैप्टर है, भगवत प्राप्ति का साधन श्रवण है। सिंसियर हियरिंग इज द ओनली वे टू अप्रोच सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉडहेड, सिंसियर हियरिंग। और श्रवण के अंतर्गत ध्यान, श्रद्धा और मनन, ध्यान, श्रद्धा और मनन। फर्स्ट टू चैप्टर ध्यान है, विश्वरूप का ध्यान, परमात्मा का ध्यान, और फिर भक्ति उसका आधार है श्रद्धा और मनन। मनन तीन अध्यायों के दो, तीन अध्यायों से उत्पत्ति मीन्स क्रिएशन, भगवान क्रिएशन करने वाला है। तीन अध्यायों में ब्रह्मा की क्रिएशन, ब्रह्मा का वैकुंठ में जाना, भगवान के साथ मिलना, तीन अध्यायों में है। तीन अध्यायों में उपपति युक्ति के द्वारा भगवान ब्रह्मा को चतुर्श्लोकी गीता देते हैं और भागवत के 10 विषयों का वर्णन करते हैं। 10 विषय भागवत के कल वहां हमने समाप्ति की थी, सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, मोक्ष, निरोध और आश्रय। 10 भगवत गीता में 5 विषय हैं और भागवत में 10 विषय हैं, इसके ऊपर कल चर्चा हुई थी। आज तीसरे स्कंद में आरंभ करेंगे, प्रवेश करेंगे, विल एंटर इनटू द थर्ड कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। भगवत गीता में एक श्लोक है 16th चैप्टर में, द्वयो सर्गो लोके अस्मिन् देव असुर एवच, 2, 3, 4 पांचवा श्लोक है, मोस्ट प्रोबेबली 5th one। इस सृष्टि में दो प्रकार का सर्ग है, सर्ग मतलब उत्पत्ति, कैसा कैसा, देव और असुर, देवताई सर्ग, डिमोनिक एंड डिवाइन। ये याद आता है ना 16th चैप्टर का ये श्लोक। तीसरा स्कंद श्रीमद् भागवत का, थर्ड कैंटो, ये दो सर्ग को अच्छी तरह से दिखाता है। दिस एग्जाम्पल ऑफ दिस टू टाइप ऑफ क्रिएशन इज विविडली डिस्क्राइब्ड इन थर्ड कैंटो। असुरी सर्ग, हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु की उत्पत्ति, दैवी सर्ग, डिवाइन, कर्दम और देवोति से कपिल देव की उत्पत्ति, मनु और शत्रुपा से दो पुत्र और 3 पुत्रियों की उत्पत्ति, दिस इज डिवाइन, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो ये बेस समझ लो, दिस इज द बेस ऑफ थर्ड कैंटो, देव असुर, डिमोनिक एंड डिवाइन, प्रोजेनी कैसी पैदा होती है। पहले स्कंद में हमने देखा सुनने वाला और सुनाने वाला, वक्ता और श्रोता विशेष रूप से। दूसरे स्कंद में देखा साधन क्या है भगवत प्राप्ति का, श्रवण। तीसरे स्कंद में क्या सुनना चाहिए, श्रोतव्य वस्तु क्या है, व्हाट हैज टू बी हर्ड। भाई सुनना ही चाहिए तो क्या सुनना चाहिए, तो श्रोतव्य वस्तु क्या है, व्हाट इज टू बी हर्ड। क्या सुनना चाहिए, कृष्ण कथा सुननी चाहिए। कहां से सुननी चाहिए, सर्ग से सुननी चाहिए, उत्पत्ति कहां से होती है, स्टार्ट फ्रॉम देयर, और उसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए सुनने में। और थर्ड कैंटो में, तीसरे स्कंद में 33 चैप्टर्स, टोटल 33 चैप्टर्स हैं, 33 अध्यायों का ये स्कंद है, और 2 विभाग हैं, 2 डिविजन्स। पहली डिविजन में भगवान का एक्शन ओरिएंटेड अवतार है, ओनली एक्शन ओरिएंटेड अवतार वारादेव। फर्स्ट सेक्शन में अप टिल 19 चैप्टर वारादेव क्रिया प्रधान अवतार, ओनली डूइंग एक्शन, नो टॉकिंग, क्रिया प्रदान कहते हैं। और 20 से 33 तक भगवान का सांख्य दर्शन, भक्ति युक्त सांख्य दर्शन देने वाले कपिल देव का वर्णन है, ज्ञान प्रदान अवतार का वर्णन है, ज्ञान देने वाले, तो दो अवतारों का वर्णन है तीसरे स्कंद में। लेकिन स्कंद शुरू कैसे होता है, हाउ इट बिगिंस, परीक्षित महाराज पूछते हैं और सनक आदि ऋषि पूछते हैं, आपने कहा विदुर घर छोड़ के गया, विदुर घर छोड़ा क्यों, विदुर ने घर क्यों छोड़ा, एक प्रश्न ये है। थर्ड स्कंद, थर्ड कैंटो स्टार्ट विद द क्वेश्चन व्हाई विदुर लेफ्ट होम। तो विदुर था कौन, विदुर बहुत बुद्धिमान, इसका वर्णन आता है पहले स्कंद में, पहले अध्याय में। विदुर धर्मराज है, यमराज जो सबका हिसाब किताब करता है वो है। मांडुक ऋषि के शराब से शूद्रानी के घर में उसका जन्म हुआ। कथा क्या आती है, कुछ चोर जाके मांडुक ऋषि के आश्रम में छुप गए, राजा के लोगों ने चोरों के साथ ऋषि को पकड़ के लाए, चोरों को तो फांसी पे चढ़ा दी, फांसी नहीं उस वक्त में सूली होती थी, यू नो सूली, ऐसा स्पीयर होता था आदमी को उसके ऊपर बिठाते थे और पूरे का पूरा उसके शरीर और सर के ऊपर से निकलता था। तो चोर तो मर गए, मांडुक ऋषि को जब बिठाया तो इतना सूली गया बाकी उसके ऊपर अंदर जाए नहीं, उसको अणी बोलते हैं, ओनली जस्ट लिटिल पीस, एवरीबॉडी सरप्राइज, क्या हुआ, ऑल दे रेन टू द किंग, महाराज पता नहीं कौन है, सूली तो उसके अंदर जाता नहीं। किंग इमीडिएटली अंडरस्टूड, अरे बाबा ये तो कोई महात्मा है, प्रणाम किया, कहीं शराब न दे दे, उतारो नीचे, गलती हो गई महाराज, बोला आई हैव नो प्रॉब्लम विथ यू, यमराज से जाके बात करूंगा कि मुझे दंड क्यों दिया, तुम्हें तो राजा तुम्हें क्या पता, यमराज को तो मालूम होना चाहिए ना, गया यमलोक में सीधा, बोले चोरों के साथ मेरे को सूली क्यों, यमराज ने कंप्यूटर खोला है, बोला देखो सो तुम छोटे बच्चे थे ना तो एक तिनका लेकर और एक चींटी को डाला अंदर पेट में उसके। मांडुक बोलता मैं छोटा बच्चा था, मुझे बुद्धि थोड़ी थी, छोटे बच्चे का दंड अभी देते हो, जाओ तुम शूद्र बन जाओ, ही कर्स्ड यमराज। सो मांडुक ऋषि के कर्ष से यमराज आज बना है विदुर। शूद्र कैसे बना, भीष्म पिता मैं की कथा बताई थी, उसमें भीष्म पिता के मैं की तो शादी करनी नहीं थी, ब्रह्मचारी था, दो और पुत्र महाराज शांतनु को थे, चित्रंगद और चित्ररथ और चित्रंगद, चित्रगुप्त के दो नाम थे। उन दोनों का विवाह भीष्म पिता मैंने अंबिला की अंबिका अंबालिका से कराया था, दोनों भाई मर गए, पुत्र कोई नहीं हुआ, वंश समाप्त हो रहा था, भीष्म ने शादी करने से इनकार कर दिया, मां सत्यवती ने अपने पहले पुत्र व्यासदेव का आवाहन किया। एक शब्द है पूजा में आवाहन, आवाहन शब्द होता है पूजा में, आवाहयामी देवता के लिए, आवाहन का अर्थ है आपको आना ही पड़ेगा, ना नहीं कर सकते हो। इनविटेशन का अर्थ होता है निमंत्रण, आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी। आवाहन ऐसे जैसे कोर्ट का समन होता है, यू कैन नॉट से नो, तो आवाहन मीन्स यू हैव टू कम। तो व्यासदेव का आह्वान किया, व्यासदेव उस वक्त कुछ अनुष्ठान करके तप में बैठे हुए थे, दाढ़ी भी बड़ी हुई थी, पहले ही देखने के तो सांवले थे, कृष्ण नाम था उनका, काले थे इसलिए। तो व्यासदेव आया, बोला माता जी आप आदेश कीजिए, आपने बुलाया, बोला हमारा वंश लुप्त हो रहा है, आप हमारे वंश को चलाइए, हमारी दो बहू हैं, इनको पुत्र प्राप्त की चाहिए। तो व्यासदेव ने कहा अभी मैं अनुष्ठान पूरा करके फिर आऊंगा, बोले नहीं अभी चाहिए तत्काल। तो व्यास पहली बहू के पास गए तो व्यासदेव को देख के वो पीली पड़ गई, शी बिकम येलो, जस्ट फेंटेड, वाइट हो गई। व्यासदेव वापस आए तो सत्यवती ने बोला बेटा मेरा कैसे पुत्र होगा, बोला पुत्र तो आपका चक्रवर्ती राजा होगा, यू विल बी एम्परर, but he is weak in his body and look like yellow. He is called Pandu. उसको पांडु कहेंगे. महाराज चक्रवर्ती तो होगा लेकिन तो हमारे को दूसरा बलवान पुत्र चाहिए, योग्य पुत्र. और फिर प्रवेश किया व्यास देव ने तो दूसरी रानी ने आंखें बंद कर दी. व्यास देव से पूछती सत्यवती क्या हुआ, कैसे है मेरा बेटा? बोला हजार हाथियों का बल है, 1000 elephants से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन आंखों से देखेगा नहीं. ये धृतराष्ट्र का जन्म हुआ. मां ने कहा ये तो एक पीला एक अंधा, हमारा राज कैसे चलेगा? एक और पुत्र की प्राप्ति कृपा कीजिए. अब वो दोनों रानियों ने एक दासी को भेज दिया. दासी ने व्यास देव की बहुत सेवा की, जलपान बहुत संतुष्ट किया. व्यास देव बाहर आए, मां ने पूछा बेटा अब मेरा संतान कैसा है? बोला बुद्धिमान होगा, उसकी बुद्धि के ऊपर दुनिया उसकी नीति को याद करेगी. लेकिन तेरी दोनों बहू तो आई नहीं थी, एक दासी को भेजा था, होगा विदुर लेकिन दासी पुत्र होगा. तो पहले रानियों के साथ दासियां जाती थी और दासियों के पुत्रों को सम्मान तो उतना मिलता था जितना राजकुमारों को मिलता है, पढ़ना वढ़ना वही होता था, केवल राज करने का अधिकार नहीं होता था. दासी पुत्र है ऑल दी राइट्स एक्सेप्ट टू रूल. तो ये विदुर ऐसे दासी पुत्र हुआ. 100 साल का उसको शराब था. श्री कृष्ण के प्रकट्य से पहले विदुर का जन्म हुआ था. 100 साल पूरे होने के बाद भी कृष्ण से इतना प्रेम था, विदुर गया ही नहीं, एक्सटेंशन ले ली छुट्टी की. उस वक्त पोस्ट के ऊपर अरियम्मा बैठा था. अरियम्मा जो पितरों का अधिपति है उसको डेप्यूटेशन पे भेजा था यमराज की पोस्ट के ऊपर. अरेंजमेंट तो सरकार बंद नहीं होगी ना, तो ये तो 100 साल के बाद गया नहीं तो फिर एप्लीकेशन भेज दी कि एक्सटेंशन कर दो हमारी. तो विदुर एक्सटेंडेड इज लीव. तो ऐसा विदुर धृतराष्ट्र के घर से अपमानित होके निकला. इसके ऊपर हमने एक दिन चर्चा की थी. रात रात को दुर्योधन का निकलो चकाका यहां से, धनुष बाण बाहर रखकर कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, और तीर्थ यात्रा भ्रमण के लिए निकल गए. कैसा घर विदुर ने छोड़ा, जिस घर में बिन बुलाए भगवान श्री कृष्ण आए थे भोजन करने के लिए. ऐसा घर छोड़ना, हमारे को तो कोई किसी साधु महात्मा का एक चीज मिलता है उसको भी हम छोड़ना नहीं चाहते. ये तो ऐसा घर था जिसमें भगवान बिन बुलाए आए थे. कृष्ण केम विदाउट इन्विटेशन. दुर्योधन ने कृष्ण को कहा आइए आइए भोजन आपके लिए 56 भोग बनाए हैं खाइए. श्री कृष्ण ने दुर्योधन को ऐसे देखा और कहा दुर्योधन भोजन उसके घर करना चाहिए जो प्रेम से खिलाए, और या आदमी इतना भूखा हो कि नहीं खाए तो मर जाएगा. भूखा तो मैं हूं नहीं, प्रेम तुम्हारे पास इसलिए नहीं है इसलिए नहीं खाऊंगा. दुर्योधन का 56 भोग त्याग गया. साग विदुर घर खाई, और विदुर के घर में भगवान श्री कृष्ण बिन बुलाए चले गए. और विदुरानी ने केले का छिलका भगवान को दिया और केला फेंक दिया. और विदुर ने कहा ये क्या कर रही है? भगवान ने कहा चुप कर काका, ये छिलके में 56 भोग से ज्यादा मेरे को रस आ रहा है. रुक्मणी का 56 भोग भी खाया है द्वारका में, द्रौपदी भी प्रेम से मुझे खुलाती है, लेकिन ये विदुरानी के केले के छिलके में और साग में जो आनंद है, तो ऐसा विदुर ने घर क्यों छोड़ा ये प्रश्न है. कोई साधारण घर तो था नहीं. थोड़े आगे आ जाए पीछे आएंगे तो उनको बैठने में आसानी होगी. विदुर ने देखा कि अच्छा हुआ कि मैनेजमेंट से मुक्त हुआ. मैनेजमेंट भी एक कर्स होता है थोड़े दिनों के लिए. मैनेजमेंट एक समय तक ठीक है, नहीं तो सब राजा जितने भी हुए आप अच्छी तरह से देखना, शास्त्र पढ़ो पुराण खोलो, ऑल द किंग्स एट ए सर्टेन टाइम किंगडम को छोड़ेंगे, राजपाट छोड़ के वन में तपस्या करने जाते. आपको मिलती है कि नहीं? ये महाराज दशरथ आईने में देखा 2-4 बाल यहां सफेद हुए हैं, और कहा कि अब राज नहीं करना है, राम जी को राज तिलक करेंगे, हम वनवास जाएंगे. यहां सारा सर सफेद होता है फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या दशरथ महाराज के पास 2 रुपया नहीं था काला रंग लगाने के लिए? नहीं, बस पुअर था, नहीं गरीब था बेचारा, रंग नहीं लगा सकता था। तो विदुर ने कहा अच्छा हुआ, बाहरी दृष्टि से मैं बंधन से मुक्त हुआ। और विदुर चला गया तीर्थ यात्राओं पे। तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्र भी गया, वहां से वापस जमुना के किनारे आया और वहां उसका उद्धव से मिलन हुआ। अब एक भगवान का परम भक्त विदुर है, जिसने कृष्ण के कहने के ऊपर पांडवों की रक्षा की थी, अनन्य कृष्ण का भक्त, और दूसरा भक्त उद्धव आया जो 5 साल का बच्चा कृष्ण के मूर्ति की पूजा करके फिर भोजन किया करता था, कृष्ण का मित्र भी था, सखा भी था। और ब्रज के भक्तों के बाद अगर किसी भक्त का नाम आता है तो उद्धव का नाम आएगा। ब्रज भागवत अमृत में भक्तों का जहां हाइट लिखी हुई, कौन भक्त ट्रायंगल के ऊपर है, जहां गोपियां और राधा रानी है, उसके बाद सखा है, गोप है, जो भी है, ब्रज से बाहर कोई पहले नंबर का भक्त है तो उद्धव है। ये उद्धव विदुर से मिले, दोनों एक दूसरे से भक्त मिले हैं। और ये जो एग्जाम्पल एक भक्त कैसे मिलते हैं और क्या करना चाहिए, ये भगवत गीता का श्लोक है ना, मत चित्त मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथ्यंत मामनित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, उसका उदाहरण उद्धव और विदुर है। दिस इज द एग्जाम्पल व्हेन दिस, जब आपस में मिले, उद्धव पूछता है द्वारका से आ रहे हैं क्या हाल है द्वारका का, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, सारे उनके परिवार कैसे, जस्ट सिंपली आस्किंग अबाउट कृष्ण। और उद्धव कृष्ण के सेपरेशन के कारण स्टंट थोड़ी देर कुछ बोल नहीं पाया, आंखों से आंसू बह रही है, और फिर उद्धव स्टार्टेड स्पीकिंग कृष्ण कथा, कृष्ण की बाल लीलाओं से लेके वो पूतना स्तन के ऊपर विष लगाकर आई थी मारने के लिए कृष्ण को, कृष्ण ने स्तन पान करके उसको मां का स्थान दे दिया, इतना दयालु भगवान श्री कृष्ण। ये श्लोक 3रे स्कंद में उद्धव का है, जो सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्मनिष्ठ से हटाकर कृष्ण भक्ति के ऊपर लाया था। और फिर उद्धव कहता है भगवान श्री कृष्ण को हम पहचान नहीं पाए, यदुवंशी हमारे के बीच में भगवान रहे, उसको हमने हमसे एक हम जैसा एक समझा। एक उदाहरण दिया है, जैसे समुद्र में मछलियों ने चंद्रमा को समझ लिया कि एक मछली है। दिस इज वर्स इज लाइक दिस, वो कैसे है, जब प्रभास क्षेत्र में मून सोमनाथ का पूजा करके जब जाता है ना स्नान करने समुद्र में, तो थोड़ा चमकता है तो मछलियां समझते एक और मछली है, दे नेवर रिकॉग्नाइज दैट दिस इज मून। और जब वापस मून को देखते तो अरे हमारे साथ था, हमने इसको पहचाना नहीं। दिस इज एग्जाम्पल दे रहे क्या, यदुवंशियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण रहे। मुझे तो दुख होता है जब हाथ जोड़ के उग्रसेन महाराज के सामने खड़े होकर कहते थे महाराज आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका ये काम हो गया, वसुदेव और देवकी के सामने दंडवत करते थे, भगवान कहते थे मैं माता पिता आपकी सेवा नहीं कर सका। ये कृष्ण जो परम पुरुष भगवान, आज मैं याद करता हूं तो मेरे को दुख होता है कि हम उसको पहचान नहीं पाए। वो सूर्य यदुवंश का अस्त हो चुका है, भगवान अपने धाम चले गए। उद्धव ने ये बताया विदुर को, और तब उद्धव ने यह भी बताया मुझे भगवान ने बद्रिक आश्रम भेजा है। बद्रिक आश्रम में क्यों भेजा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं तो भ्रमण करके पूरे सब संतों को सब ऋषियों को दर्शन दिया, लेकिन किसी कारण से बद्रिक आश्रम कभी मैं जा नहीं पाया, तो नर नारायण के पास मेरा ये संदेश और ये दिव्य ज्ञान ले जाकर वहां के ऋषियों में तुम मेरे प्रतिनिधि होके जाओ। तो बद्रिक आश्रम उद्धव को भेजा भगवान ने, तो उद्धव कहता है कि भगवान ने अंतिम समय मेरे को भागवत का उपदेश दिया। विदुर कहता है मुझे बताओ भागवत जो आपको उपदेश दिया है, प्लीज टेल मी। उस वक्त उद्धव मर्यादा को जानते हुए कि मैं छोटा हूं, विदुर बड़ा है, सम्मान्य है, और उस वक्त ये भी विदुर ने कहा, कितना ये उद्धव ने जब कहा तो विदुर को कितना अच्छा लगा होगा कि विदुर मेरे सामने मैत्रेय ऋषि को भगवान श्री कृष्ण ने आपको यही उपदेश देने का आदेश दिया है। ये सुना विदुर ने कि अंत समय में भगवान ने मेरा नाम लेके याद किया। कितने ब्रह्मांड में लोग होंगे जो भगवान को याद करते हैं और मेरे को याद किया भगवान ने। वहां लिखा है विदुर की आंखों से आंसू बहते हैं और श्री प्रभुपाद ने भावार्थ में लिखा है, भगवत कथा में जब आंखों से दो आंसू बहते हैं भगवान का दयालुता को देखकर, भक्त वत्सलता को देखकर, करुणा को देखकर, तो भक्त के हृदय का मैल सब धुल जाता है। भगवान के लिए कथा में कभी दो आंसू बह जाते हैं तो दिल साफ होता है। असल में हमारा भगवत प्राप्ति का जो माध्यम चेतना महाप्रभु ने दिया है ना, ये रास्ता ही करंदन का है, रोने का है। इस दुनिया में हम बहुत आंसू बहाए हैं दुनिया के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए बहुत रोए हैं कभी कभी। भगवान के लिए दो आंसू निकलते नहीं है, बहुत समस्या है ये। जिस दिन भगवान के लिए दो आंसू निकले उस दिन हृदय साफ हो जाएगा। ये प्रभुपाद ने भावार्थ में ऐसे लिखा है। यहां चार पांच अध्याय समाप्त होते हैं। ये भागवत कथा सुनने में कितनी रुचि है उसका उदाहरण विदुर है। विदुर अब यहां से चला है, बद्री का आश्रम आया है। उद्धव चला गया, उधर गया बद्री का आश्रम, विदुर आया हरिद्वार और मैत्र ऋषि के चरण में बैठा, मैत्र ऋषि के चरणों में बैठ गया और मैत्र ऋषि से प्रश्न पूछने शुरू किया। और ये तीसरे और चौथे स्कंद में मैत्रेय विदुर संवाद है। मैत्रेय पूछता है और विदुर पूछता है और मैत्रेय उत्तर देते। अब मैत्रेय ने पहले क्या पूछा कि सृष्टि कैसे हुई है, संसार के अंदर भगवान सृष्टि करता कैसे है, फिर भगवान है तो फिर माया के अंदर कैसे आ जाता है, जगत में आएगा तो इसका तो मतलब माया में आएगा तो कैसे आता है। तो इसके अंतर्गत पहले सृष्टि का वर्णन है, सृष्टि कैसे होती है, जो हमने दूसरे स्कंद में कहा था, गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि के कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और फिर ब्रह्मा जी दूसरी सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने बहुत सृष्टियां की, दे लेक्स जो सृष्टि करें सृष्टि बढ़े नहीं। पहले मन से ब्रह्मा जी ने चार कुमार उत्पन्न किए, चतुर कुमार ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं। तब सृष्टि मन से सोचने से होती थी, फिर नारद जी की उत्पत्ति की, वो हृदय से हुआ, इंटेलिजेंट भक्ति का अवतार है, चतुर कुमार ज्ञान स्वरूप है। फिर सप्त ऋषियों की उत्पत्ति की, ये तो भगवत गीता में दसवें अध्याय में है। हाँ, सप्त ऋषि चतवारो मन व मनसा जाता, मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं सप्त ऋषि चार कुमार और, तो सप्त ऋषियों की उत्पत्ति की। और ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम मुनि की उत्पत्ति हुई, बैग से, कर्दम मुनि ब्रह्मा जी की बैग से उत्पन्न हुए। एक लड़की का भी जन्म हुआ वाक नाम की, ब्रह्मा जी के द्वारा वाक। उसी लड़की के प्रति ब्रह्मा जी को भी थोड़ी देर के लिए काम का आवेश हुआ और ऋषियों ने कहा, पिताजी ये क्या कर रहे हो। उस वक्त मरीचि के बेटे छह हंसे थे, सिक्स चिल्ड्रन ऑफ मरीचि दे लाफ्ट। और इसलिए बड़े आदमी के काम को न समझ कर हंसने के ऊपर उनको शराप मिला असुर होने का, और यही छह देवकी के छह बेटे होके पैदा हुए, षड गर्भ इसको बोलते। ये ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे थे। जब दसवें स्कंद में आएंगे तो इसका फिर चर्चा करेंगे, लेकिन ये छह बच्चे वो थे। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि बढ़ नहीं रही है मानसिक। इस बीच में बहुत सा विस्तार है कि असुर देवता गंधर्व ये सब बनाया, लेकिन जब मानव बनाया, कैसे मानव बनाया, ब्रह्मा जी ने ऐसे विचार करते हुए अपने राइट हैंड साइड से एक सुंदर सा पुरुष बनाया और लेफ्ट हैंड साइड से एक स्त्री बनाई। ये पहला पुरुष और स्त्री धरती के ऊपर प्रकट हुआ ब्रह्मा जी के शरीर से। जो पुरुष हुआ उसका नाम हुआ स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम हुआ सतरूपा। ये पहला पुरुष और स्त्री का जन्म है इस धरती के ऊपर, इससे पहले ऐसा जन्म नहीं हुआ। और कैसे हुआ, ब्रह्मा जी के शरीर से हुआ, इसलिए उसको स्वयंभू कहते हैं, सेल्फ बॉर्न, मदर मदर फादर नहीं है। और मनु से मानव जाति शुरू होगी, द चिल्ड्रन ऑफ मनु इज कॉल्ड मैन, मनु से हमारा मैं, हमको मैन कहने लगे लोग। अब जब ये दोनों पति पत्नी, ये तो स्त्री और पुरुष हुआ, दोनों ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, आज्ञा क्या है हमारे लिए, हम आपकी सेवा करना चाहते, आपसे उत्पन्न हुए हैं। मनु ने कहा आप सृष्टि करो, आप प्रजापति हो, प्रजा की उत्पत्ति करो, मानसिक सृष्टि नहीं चल रही है, अब आप मैथुनी सृष्टि शुरू करो, स्त्री पुरुष से स्त्री सृष्टि शुरू होनी चाहिए। तो दोनों ने कहा पिताजी सृष्टि कहां करें, पृथ्वी तो है नहीं, पृथ्वी नहीं है तो सृष्टि किसके ऊपर करें। उस वक्त ब्रह्मा जी सोचने लगे, बात तो ठीक है, पृथ्वी तो है नहीं, पृथ्वी तो गर्भ सागर में डूबी हुई है। उस वक्त ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे थे, ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा पी के साइज का, पी नट की साइज का कोई चीज नीचे गिरा और देखते देखते बड़ा होने लगा, बड़ा 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 बड़ा, ये तो वो क्लाउड्स तक पहुंच गया। सब देखने लगे, ऋषि ये कौन है, कौन है, कौन है, तो साक्षात भगवान विष्णु होगा, और कौन हो सकता है। और तब वारहा देव का प्रकट्य हुआ, ये श्वेत वारहा है, एक रक्त वारहा पहले हुआ है, और ये जो कल्प है श्वेत वारहा कल्प है। वारहा देव का प्रकट हुआ, ऋषियों ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, और वारहा देव ने पृथ्वी को लाने के लिए पानी में प्रवेश किया, समुद्र में प्रवेश किया। पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है, तन्मात्रा समझते ना, इसको ऐसे समझे, पांच हमारी इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच इंद्रियों के विषय। विषय क्या है इंद्रियों के, आंख का रूप, कान का शब्द, नासिका का गंध, इन विषय को तन्मात्रा कहते हैं। तो नासिका की, पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है, भगवत गीता में लिखा है ना, पृथ्वी में गंध में हूं, आई एम दी फ्रेग्रेंस इन दी अर्थ। तो फ्रेग्रेंस होंगेगा नासिका से, तो पृथ्वी को निकालने के लिए वारहा देव को नासिका से आना पड़ा। आध्यात्मिक नासिका अधिभौत है, वारहा देव अधिदेह आध्यात्मिक है और पृथ्वी अधिभौतिक है, तो नासिका से उत्पत्ति संगति है कि पृथ्वी को निकालना है, देयरफॉर ही केम आउट ऑफ द नोज, सूंघना है ना। और वारहा पृथ्वी से बहुत प्रेम करता है, पृथ्वी के मल के अंदर भी रहता है, और पृथ्वी के साथ वारहा ने विवाह भी किया, और पृथ्वी से वो नरकासुर भूमासुर पुत्र भूमि का है, वो वारहा देव ने का पुत्र है उस वक्त पृथ्वी के साथ। यहां ये बात आती है इस कि वारहा देव जब जल में पृथ्वी को लेने गए, तब भगवान के काम को रोकने के लिए हिरण्याकश आया, हिरण्याकश ने भगवान को रोकना चाहा। तो अब यहां एक और कथा बीच में आती है, वो आती है कि देवता बड़े दुखी होने लगे, पृथ्वी में सब एवरीथिंग वॉज गोइंग जस्ट अगेंस्ट नेचर। सब ब्रह्मा जी के पास गए, क्या हो रहा है बाबा, देन ब्रह्मा जी टोल्ड वन स्टोरी, और इस स्टोरी से सिद्धांत क्या स्थापित करना है हमको, दैवी ने असुरी संपत्ति की उत्पत्ति कैसे होती है, असुरी संपत्ति की उत्पत्ति कैसे होती है। दित्ति और कश्यप, दित्ति ने कश्यप को पहले पसंद किया, फर्स्ट ही चोज कश्यप आउट ऑफ हर डिजायर, और फिर पिता को कहा कि इसके साथ हमारा विवाह करो। तो फर्स्ट थिंग इज ये विवाह कैसे था, वासना, वासना मीन्स लस्टी, डिजायर के कारण विवाह था। फर्स्ट रीजन फॉर असुरी, असुरी उत्पत्ति के लिए पहला कारण वासना का विवाह, जिसको आधुनिक भाषा में लव मैरिज कहते हैं, मॉडर्न भाषा में उसका नाम लव मैरिज है। सेकंड, काल कौन सा है? संध्या काल, सायन काल, संध्या का काल है। संतान की उत्पत्ति के लिए पति के पास संध्या काल में गई। और तीसरा, देश कौन सा है? यज्ञशाला, कश्यप यज्ञ कर रहा था। और चौथा, पति की आज्ञा का उल्लंघन। और पांचवा, रुद्र का अपमान। फाइव रीजन, फाइव कारण है, पांच कारण है। वासना का विवाह, देश संध्या काल, उस वक्त रुद्र अपने भूत गणों के साथ घूमता है। अगर कोई उस वक्त स्त्री पुरुष संभोग करते हैं तो उसके उदर के अंदर वो अपने भूत बिठा देता है, जो बाद में आतंकवादी होके पैदा होते हैं। हाँ, दे क्रिएट ट्रबल फॉर द होल वर्ल्ड। तो ये तो छोटे आतंकवादी है, रणाकश तो ऐसे आतंकवादी थे, इंद्र भी भाग जाता था। तो इस वक्त रुद्र साइन संध्या काल जो होता है, संध्या किसको बोलते हैं? तीन संध्या है, त्रिकाल संध्या बोलते हैं। संध्या का मतलब कनेक्शन, जोड़ना दो चीजों को। संध्या बोलते जैसे वेल्डिंग करना, ज्वाइंट बोलते हैं संध्या। तो शाम को सूर्यास्त हो जाए, सनसेट हो गया, लेकिन स्टार अभी तक नहीं निकले हैं, रात शुरू नहीं हुई है, सनसेट हो गया, वो जो समय उसको बोलते हैं सायंकाल संध्या। सुबह तारे चले गए हैं, नो मोर स्टार्स, लेकिन सूर्य का उदय नहीं हुआ, प्रातः संध्या, ये प्रातः काल की संध्या है। और दोपहर का 12 बजा मध्यान्ह संध्या है, मिड डे, इसको संध्या बोलते हैं। ये भगवान के भजन करने का समय है, संध्या काल। त्रिकाल संध्या में भगवान का गायत्री उपासना केवल संध्या में हो सकती है, हर समय गायत्री मंत्र नहीं जपा सकता, ओनली संध्या में जपा जा सकता है, नो अदर टाइम। हरे कृष्ण मंत्र कभी भी जप सकते हैं, सोए हुए भी जप सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र एग्जैक्टली ओनली संध्या टाइम, नो अदर टाइम। कोई बेनिफिट नहीं है दूसरे टाइम का, अपराध है। तो ये पांच कारणों से दिति ने कश्यप को जबरदस्ती पकड़ लिया। कश्यप भी दिति की इच्छा पूरी करने के बाद फिर नहा के आचमन करके यज्ञ में बैठा, तो दिति को गलती अपनी का एहसास हुआ। शी रिग्रेटेड, पति देव माफ करना, मैं आपकी आज्ञा पालन नहीं कर, रुद्र को मैं मना लूंगी, रुद्र को मैं प्रार्थना करूंगी कि मेरा अपराध क्षमा कर देगा। कश्यप कहते कुछ भी हो, लेकिन तेरे उदर के अंदर दो असुर जो पूरी दुनिया को नाश करेंगे प्रवेश कर चुके हैं। दिति ने बहुत प्रार्थना की, कृपा कीजिए। तो कहा तुम अपनी गलती को मान रही हो, मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रही हो, इसलिए मैं कहता हूं तेरा पोता ऐसा भक्त होगा, दुनिया जब किसी भक्त का नाम लेंगे तो तेरे पोते का नाम पहले आएगा, प्रहलाद तुम्हारे पोते के रूप में प्रकट होगा, ये आशीर्वाद दे दी। कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे, प्रहलाद की, कल नरसिंह चतुर्दशी, कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब ये आए क्यों, कहां से ये असुर आए? ब्रह्मा जी बता रहे, ब्रह्मा जी देवताओं को कहते, देवताओं ये जो इस वक्त आपको चारों ओर से अंधकार दिखाई दे रहा है, चारों ओर से डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, इसका कारण यह है कि ये दो असुर के रूप में दिति के गर्भ में प्रवेश किया है। कौन है ये? देवता ने कहा कौन है ये? तब ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने मेरे चार बेटों को, चार कुमारों को, सनकादि को एक दिन कहा था कि बेटा तुम समझते हो केवल ब्रह्म का ध्यान करते हो, कभी तुमको टाइम मिले तो वैकुंठ भी देख के आना, बहुत सुंदर है, मैंने देखा हुआ है। मैंने उनको कहा था वैकुंठ का दर्शन करने जाना। एक दिन वो मेरे चार पुत्र वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए गए, छह वैकुंठ के दरवाजों को क्रॉस किया, किसी ने रोका नहीं, सेवेंथ डोर के ऊपर दो चतुर्भुज रूप में चार हाथों वाले पीला पीतांबर पहना हुआ सांवले से, सर के ऊपर मुकुट भी था, कानों में कुंडल थे, वो तो देख के समझा पता नहीं विष्णु यही है क्या, लेकिन उन्होंने डंडा ऐसे आड़ा रख दिया, कहां जा रहे हो बच्चे नंगे पतंगे, आपको अधिकार नहीं है अंदर जाने का। चार कुमार सबसे बड़े हैं लेकिन सबसे छोटे आज भी, और वो आज भी इस धरती पर रह रहे हैं। सबसे बड़े हैं, पहले ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन लगते हैं 5 साल के बच्चे और कपड़ा पहनते नहीं है, दिगंबर है। तो ये दो द्वारपाल थे, किसके, वैकुंठ के, नाम था जय और विजय। द्वारपाल का काम है दरवाजे की रक्षा करना। अब छोटे बच्चों को यह भी कह सकता है आप ब्राह्मणों बैठ जाओ, मैं विष्णु से पूछ के आता हूं, बुलबुला के आता हूं आप ब्राह्मणों के लिए, ऐसे भी कहा। डंडा किसी के सामने रखना अपराध है, किसी का दंड रखना अपराध है। और जय विजय ने एक बार लक्ष्मी को भी जाने से रोका था, और लक्ष्मी ने विष्णु को जाके कहा भी था। विष्णु ने कहा पत्नी के लिए किसी को डांटना ये तो लोग कहेंगे ठीक नहीं है, देखो टाइम आएगा तब बात करेंगे। ये भगवान विष्णु से सीखने की बात है, अच्छी बात है, पत्नी के लिए किसी झगड़ा नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु ऐसे कह रहे। अब इन चार कुमारों को आया क्रोध, मतलब तुमको यहां वैकुंठ में रहने का अधिकार किसने दिया है, हमको अंदर नहीं जाने देते हो, तुमको तो तुमको असुर बनना चाहिए। इतना कहा यहां सोए हुए विष्णु, लक्ष्मी चरण दबा रही है, गरुड़ पास खड़ा है, भगवान विष्णु दौड़ के वहां से भागे, गरुड़ के ऊपर चढ़े नहीं, पैदल दौड़ते हुए गेट के ऊपर आए और हाथ जोड़ के कहते हैं ब्राह्मणों मेरे से अपराध हो गया, आपको आपका स्वागत करने में मुझे देर हो गई, और मेरे भृत्य मेरे सेवक मेरे सर्वेंट ने जो गलती की आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, भृत्य का अपराध मालिक हूं मैं मानता हूं, मेरा गलती है, आपने अच्छा किया इसको दंड दिया। भगवान ने कहा कि पहले मेरे को देना था, लक्ष्मी को रोका था, लेकिन आज आपने अच्छा बहाना बना दिया है, अब तो अच्छा ही हुआ, मेरी भी इच्छा थी। लेकिन ये छोटे से बच्चे थे, भगवान विष्णु तो बहुत आकार में बड़े हैं, वो चरणों के पास ऐसे कोई नासिका कोई लंबा थोड़ा सांस लिया तो तुलसी और चंदन था उसकी जो फ्रेग्रेंस गई ना नाक में, वो तो वो इतना आनंद में मगन हो गए, उसको ये भी भूल गया कि हम ब्रह्म आनंद उनको भूल गया, भगवान को देखते नहीं नहीं हम कुछ नहीं बोलना चाहते, आप जो करें वो करें, ऐसे करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो यहां इन चार कुमारों को भगवान की भक्ति केवल नासिका से भगवान के तुलसी दल और चंदन सूंघने से हो गई। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं वो दोनों जय और विजय, भगवान ने कहा तुम असुर बन के जाओ, ब्राह्मणों के साप का मैं सम्मान करता हूं लेकिन तुम्हारा परित्याग भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा रिक्लेम करने के तुम्हें वापस लाने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। और यहां कहता है कश्यप दिति को, दिति तुम्हारे बेटे दोनों असुर जरूर होंगे लेकिन उनको भगवान अपने हाथों से आकर वापस ले जाएंगे। दिति कहती है भगवान मारेंगे ना, ब्राह्मण के शराब से तो नहीं मरेंगे ना, ब्राह्मण के शराब से मरने वाले की अधोगति होती है, भगवान आएंगे तो दिन सदगति हो जाएगी। तो ये कथा ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ, पुराणों के अंदर जितना धन जितना वैभव जितनी आयु एज टाइम इन हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप इतना किसी और का नहीं मिलता है जितना इनके पास। एक आपको उदाहरण सिर्फ देता हूं, रावण के ऊपर जब भगवान राम आक्रमण करने के लिए जा रहे थे अटैक करने, तो रावण भागता हुआ बलि से सहायता लेने के लिए गया, तो पहले तो वामन देव ने उसको धक्का देके मारा, दूर जाके गिरा रावण, फिर कैसे भी करके अंदर चला गया। बलि को कहा देखो आप दैत्य हो मैं भी असुर कुल का हूं, अब हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है आप हमारी सहायता कीजिए। बलि ने कहा ठीक है आपकी सहायता है, तो आप तो ले तो पराई स्त्री आए हो लेकिन हो तो दानव, तो मैं सहायता तो करूंगा लेकिन पहले एक चीज दिखाता हूं। पीछे ले गया कोर्ट यार्ड में, एक चौपहाड़ जितना हो ऐसे ऊपर देखता है रावण, सोने का जस्ट सॉलिड गोल्ड का एक पहाड़ पड़ा है। बोला पहले रावण मैं तुम्हारे को ये गिफ्ट देना चाहता हूं, देखो तो है क्या। बोला ये ट्रायंगुलर लगता है, गोल्ड का पहाड़ है। बोला इसको तुम ले जाओ, इसको तुम उठा के ले जाओ, फिर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। रावण उठाता है, उठता नहीं, तब बलि महाराज कहते इसको क्या है, समझते हो क्या है, बताऊं आपको, ये मेरे पिता हिरण्याकश के कान का एक कुंडल है, नरसिंह देव से लड़ते हुए नीचे गिरा था, तुमसे हिरण्याकश का कुंडल उठता नहीं है तो कितना शक्तिशाली हुआ होगा वो, उसको भगवान ने मार दिया, तुम काहे के लिए मेरे पास आए हो राम की सहायता के लिए। इतना बड़ा दिखाया था, पहले तो रावण समझे थे तो सोना मिल रहा है लेकिन उठा ही नहीं, वो तो केवल कान का कुंडल था हिरण्याकश के। तो दिखाना ये था कि वैकुंठ से गिरे हुए लोग के पास भी इतना बड़ा वैभव है, ऑपुलेंस है, इतना बड़ा उसका टाइम है, तो वैकुंठ में कितना सुख होगा, केवल दुनिया को यह दिखाना है, वहां से गिरा हुआ भी इतना बड़ा है तो वहां रहने वाला कितना सुखी होता होगा। और फिर वैकुंठ से गिरने वाला ब्राह्मण के हिसाब से एक बना हिरण्याकश, इक्ष कहते हैं आंख को और हिरण्य कहते हैं सोने को, जिसकी आंख सोने के ऊपर हो, अर्थ धन का लोभी, और हिरण्याकशिपु का अर्थ है सोना और बेड, गोल्डन बेड के ऊपर, स्पंज के ऊपर काम, अर्थ और काम की प्राप्ति होती। असुरी प्रवृत्ति के बच्चों में अर्थ और काम ज्यादा होगा, अर्थ और काम, असुरी सर्ग, अर्थ और काम प्रधान है, पैसा चाहिए, भोग चाहिए, और दुनिया में ये दो चीजों के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। तो वैकुंठ के दरवाजे के ऊपर गेट कीपर होते हैं, सबको नहीं जाने देते। एक बार एक साधु था, बहुत कथा करता था, मरने के बाद वैकुंठ के दरवाजे पे गया, दरवाजे वाले बोले तुम अंदर मत जाओ, बेचारा वेटिंग में बैठ गया, बोला मैं कथा करता था, मैं वेद पढ़ता था, मैं भागवत का कथा करता था, मेरे को जाने दो, बोले बैठ जाओ। तब एक आदमी आया, बाल बिखरे हुए ऐसे, और दरवाजा खोल दिया, अंदर गया, बोले ये क्या करते हो, ये तो नाइंसाफी है, अनजस्टिस है, मैं कथा करने वाला अंदर नहीं जाने देते हो, और वो देखो ऐसा आदमी है उसको अंदर जाने दे दिया। द्वारपाल ने बोला देखो तो सही उसका लिखा हुआ क्या है, कौन है, तो कौन है बताओ, बोला ड्राइवर था बस का। बोला बस के ड्राइवर को जाने देते हो, ब्राह्मण को नहीं जाने देते हो? बोला आगे भी सुनो, बहुत रफ ड्राइवर था, जब बस चलाता था सब बैठे बैठे राम राम जपते थे, और महाराज तू कथा करता था सब सो जाते थे। तो भगवान के घर में जाने वाला जो भगवान का नाम जपाता है चाहे वो ड्राइवर हो तो भी वैकुंठ का दरवाजा खुलता है, और कथा करने वाला लोगों को सुला देगा तो उसका काम नहीं चलेगा। यहां दोनों भाइयों ने तपस्या की, बड़ा बल मिला, आज हिरण्याकश अपने भाई को खुश करने के लिए इंद्र लोक में गया, इंद्र भाग गया, वरुण लोक में गया, वरुण को बोलता है एक काम करो तुम जरा मेरा से लड़ाई करेगा, वरुण कहता है मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैंने लड़ना छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारे बाजू में ये खुजली जो हो रही है ना, ये इचिंग हो रही है ना, विष्णु के सामने जाओ तो कुत्ते की तरह तेरे को मारेगा। कहां है विष्णु? बोले जाके ढूंढो। तब नारद जी आते हुए, हिरण्याकश को नारद जी कहते हैं असुरराज कहां जा रहे हो? बोले देव ऋषि कहां है विष्णु? बोला वो देखो धरती लेके जा रहा है उठा के बारा, वो देखो वो धरती को उठा के ले जा रहा बारा। अब तो हिरण्याकश कहता है कहां ले जाए हो, हम असुरों की पाताल से ले जा रहे हैं धरती, हमारी वापस दे दो पृथ्वी, अर्थ दे दो वापस, अरे सुनते नहीं हो क्या? वारादेव बिल्कुल नहीं सुना, चुप करके चले गए। क्या शिक्षा दे रहे थे? काम अपना पूरा करना चाहिए, फिर किसी के साथ बात करनी चाहिए बेकार में, पृथ्वी उठाए उसे बात करे, टाइम खराब करने की क्या जरूरत है? पृथ्वी को अपने जगह पे स्थापित किया, फिर मुड़ के वारादेव ने कहा हम तो हैं वारा कुत्तों को ढूंढते हैं और तुम जंगली कुत्ता मिल गया, इधर आओ, ये जस्ट डाग हो, हम तो वारा है, हमारा काम डाग को मारना, आइए। और युद्ध शुरू हो गया, भयंकर युद्ध ऐसा हुआ कि गदा से पहले युद्ध हुआ, वारादेव की गदा गिर गई, देवता भयभीत हो गए। तो हिरण्यकश्यप कहता पहले गदा उठाओ, बाद में बात लड़ाई करेंगे। फिर तो मिस्टिक पावर से युद्ध करने लगा। ब्रह्मा जी ने ऊपर से कहा वारादेव इसके साथ खेलो मत, ये असुर है, सायं काल को इसका बल बढ़ जाएगा, हम सब इससे परेशान है, इसको जरा जल्दी शांत करो। अब भगवान वारादेव ने पकड़ के हिरण्यकश्यप को एक मुक्का दे मारा गले के ऊपर, इधर कनपट्टी पे। वारादेव नीचे गिरा, वारादेव ने नीचे गिराया हिरण्यकश्यप को। यह हिरण्यकश्यप का अंत होता है। पुष्प वर्षा हुई, सब देवता आए, वारादेव की पूजा की। तो ये वारा अवतार हिरण्यकश्यप का वध और पृथ्वी को लाके अपनी ऑर्बिट में स्थापित किया। तो ये पहले 19 अध्यायों में वर्णन है इसका। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देवी संपत्ति की उत्पत्ति कैसे होती है। मनु और शत्रुपा ने अपने पिता की आज्ञा मानी, पृथ्वी के ऊपर प्रजा उत्पत्ति करने चाहिए, तो उनके दो बेटे हुए, एक का नाम है उतानपाद, एक का नाम है प्रियव्रत। उतानपाद और प्रियव्रत का वंश चला, जिससे देवी संपत्ति के लोगों की सृष्टि हुई और पालन हुआ। तीन हुई पुत्रियां मनु की और शत्रुपा की। तीन पुत्रियां हुई, पहली का नाम आकुटि, देवहूति और प्रसूति। आकुटि, देवहूति और प्रसूति, ये हुआ देवताई, डिवाइन प्रोजेनी, जिनके द्वारा सृष्टि हुई। आगे सब हम इनके संतान हैं, इन दो बेटे और तीन बेटियों के सब संतान हैं। और दूसरा अब डिवाइन प्रोजेनी दूसरी जो है उसका वर्णन सुन लीजिए, दूसरा पार्ट वो है। उसमें क्या आता है, कर्दम मुनि ब्रह्मा के बेटे हैं, तपस्या करने चले गए, कहां, सरस्वती नदी के तट के ऊपर, और स्थान का नाम है सिद्धाश्रम, और ये जगह है आज प्रेजेंट ज्योग्राफिकली ये जगह है सिद्धपुर के नाम से, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर 180 किलोमीटर दूरी के ऊपर टूवर्ड्स राजस्थान, जगह है सिद्धपुर। वहां आप कभी दर्शन करने जाएंगे तो वहां सिद्धपुर में कर्दम देवहूति का मंदिर है और कपिल देव का मंदिर है। वहां कपिल कपिल देव का प्रकट्य वहां हुआ है, अपियरेंस कपिल देव का उस सिद्धपुर स्थान पे हुआ है। सरस्वती के तट के ऊपर कर्दम जी तपस्या करने बैठे, और तपस्या इतनी की कि भगवान विष्णु सामने आके खड़े हो गए। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए कर्दम की तपस्या से, आंखों से दो बूंदे आंसू की गिरी भगवान के, उनसे बिंदु सरोवर बना, और उस सिद्धपुर में बिंदु सरोवर आज पड़ा है। इस बिंदु सरोवर की महिमा इतनी है कि गोपियों ने एक बार राधा रानी को बताया, जो बिंदु सरोवर में एक बार नहाता है उसको कृष्ण का कभी वियोग नहीं होता है, इज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम कृष्ण। राधा रानी ने कहा दोबारा पढ़ो, रीड इट अगेन, एंड देन शी डिसाइडेड टू गो टू बिंदु सरोवर। और राधा रानी बिंदु सरोवर आई, और यदुवंशी और भगवान की रानियां बिंदु सरोवर आए, और वहां राधा और कृष्ण का मिलन हुआ है, और भगवान की रानियों का और राधा रानी का मिलन हुआ है। और उस प्रसंग में एक ये कथा आती है, हॉट मिल्क, रुक्मणी गर्म दूध राधा राधिका को पिलाती है, ये उसके प्रसंग में कथा आती है। आपने सुनी हुई कथा है, ऐसे दो शब्दों में बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जागते हुए रुक्मणी ने देखा, बोला आप अभी तक सोए नहीं, बोला राधिका सोई नहीं है तो मेरे को नींद नहीं आएगी। बोला क्यों नहीं सोई, बोला वो रात को दूध पीती है तब सोती। तो रुक्मणी जल्दी गई, बहुत गर्म दूध किया, सोने के बर्तन में ले गई, पिला के वापस आई, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को ऐसे हाथ लगाया तो चरण जले हुए, ब्लिस्टर, व्हाट हैपेंड, कहीं भय नहीं, ये कैसे हो गया। बोले आपने दूध बहुत गर्म पिलाया राजा रानी को, उसके हृदय में मेरे चरण रहते हैं, वो जल गए हैं।
तो हाट दूध का उस इस बिंदु सरोवर के ऊपर ये कथा हुई है। वो स्थान कभी देखा जा सकता है, कोई उस तरफ जाएगा अहमदाबाद की तरफ, यू कैन गो एंड सी दैट प्लेस। यहां कर्दम मुनि की तपस्या से भगवान को दो आंसू पहले गिरे, उससे बिंदु सरोवर बना। फिर कर्दम की दिल में भगवान ने, भगवान को तो सबकी दिल में क्या है पता लगता है, अरे कर्दम इतनी तपस्या, मेरा दर्शन के बाद भी तुम्हारे को विवाह करने की इच्छा है, शादी करना चाहते हो, ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग में जाना चाहते हो। कोई कहते एक भगवान ने एक और आंसू गिरा के इतनी तपस्या के बाद फिर भी दुनिया में फंसना चाहेगा फिर एक आंसू और गिरा। लेकिन भगवान ने कहा कर्दम अब तुम आज से पांचवें दिन तुम्हारी कुटिया के ऊपर स्वयंभू मनु अपनी बेटी को लाएगा। कर्दम तपस्या के बाद भगवान का दर्शन करके गए अपनी कुटिया पे, घास की कुटिया, पर्ण कुटीर पे। इस पूरे ब्रह्मांड का राजा मनु, मनु शासक है, मनु इज किंग, अपनी पत्नी सतरूपा के साथ रथ के ऊपर चढ़ के अपनी बेटी देवहूति को लेकर और घर चलाने के लिए जितना जरूरी सामान है उतना लेकर कर्दम के आश्रम में आया। राजा ने, कर्दम ब्राह्मण है, उसको प्रणाम किया, और बड़ा भाई भी है, मनु भी ब्रह्मा का बेटा है, कर्दम बड़ा बेटा है, प्रणाम किया। कर्दम ने आशीर्वाद दिया, समाचार पूछा, और फिर कर्दम ने कहा, कर्दम को मनु ने कहा ये हमारी पुत्री है, आपके विवाह के योग्य है, और हम आपका आपको ये कन्यादान करने आए हैं, आप इसका पाणि ग्रहण कीजिए, हाथ लीजिए। कर्दम ने कहा भगवान ने मुझे ये संकेत किया था, मैं इसको स्वीकार करता हूं। इस प्रवचन करते हुए हमने कहा कि कार्ड वार्ड छपा नहीं था, मनु ने राजा था लेकिन बड़ा कोई शादी का कार्ड छप के ज्यादा खर्चा बेकार का नहीं किया था मनु गरीब नहीं था लेकिन बेकार का उसने कुछ खर्चा नहीं किया, बच्ची को जरूरी सामान दे के वापस अपने राज में चले गए, और बड़ा राज में उसका स्वागत हुआ था। इससे संकेत मिलता है कि हमें सिंपल ये कार्य सिंपल करने चाहिए, सिर्फ बच्ची के सुख को देखना चाहिए। दुनिया वालों को ऐसे, आजकल शादी में खाता कौन है पता है, दो आदमी को भोजन नहीं मिलता है, एक जो जिसकी शादी होती है उसको और दूसरा उसके बाप को, बाकी सब जाके खा जाते हैं, वो दो बेचारे बंधे हुए होते हैं कहीं जा नहीं सकते। एवरीबॉडी फुल्ली सेटिस्फाइड एक्सेप्ट जिसकी शादी होती है उसको छोड़ के। देखा ये समस्या है कि नहीं, जब से ये भोजन का सिस्टम शुरू हुआ है तब से ये दो बेचारे भूखे रहते हैं हमेशा, और सब खा जाते हैं, बाकी बच्चा खचा आखिर में इनको खिलाते हैं। पहले अच्छे से अच्छा खुलाते थे, दूल्हा को पूजा करके आगे बहुत बड़ा पाट रखते थे, पहले भोजन उसको मिलता था। अब अच्छा है कि शादी करना ऐसी शादी का क्या, पहले दिन ही भोजन नहीं मिलता है। तो आज कर्दम देवहूति आई, और देवहूति को कोई वासना नहीं है भोग और काम की, और सेवा में, अपने पति की सेवा में लग गई, और कर्दम तपस्या में लग गया। बहुत समय तपस्या के बाद देवहूति दुबली पतली हो गई, राजकुमारी थी, मनु पुत्री थी, लेकिन आज उसके कपड़े भी थोड़े से गीले मेले पड़े हैं, शरीर भी बहुत हड्डी जैसा हो गया। एक दिन कर्दम पूछता है, मनु कन्या आपकी क्या इच्छा है? तब देवहूति कहती है, आपने मेरे पिता को कहा था कि पुत्र उत्पत्ति के बाद आप संन्यास लेके चले जाओगे, तो ग्रस्त, और वो भी बड़े संकोच के साथ लिखा है भागवत में, अंगूठे से धरती को खोजती हुई नीचे सर करके देवहूति ने ये इच्छा प्रकट की। मनु ने अपने योग बल से एक बहुत बड़ा महल बनाया जो आकाश में उड़ सकता था, लेकिन देवहूति उस महल को देखकर भी देवहूति खुश नहीं हुई। मनु समझ गया कि ये तो बेचारी राजकन्या है, कितने कपड़े वस्त्र और इसका शरीर ऐसा है। बोला देवहूति बिंदु सरोवर में नहा के आ जाओ। जैसे देवहूति बिंदु सरोवर में गई, कर्दम ने अपने योग बल से हजारों विद्याधर कन्याएं उत्पन्न की, जिन्होंने देवहूति का बहुत सुगंधित तेल से स्नान कराया, सुंदर वस्त्र आभूषण, बाहर निकली देवहूति, सुंदर कन्या मनु कन्या इतनी सुंदर बन के वापस आई। अब देवहूति और मनु दोनों उस पैलेस में चढ़े जो बुद्ध बहुत सुंदर बनाया था, विद्याधर कन्याओं के साथ बहुत नंदन कानन में स्वर्ग में जाके घूम फिर के वापस आए। फिर कर्दम ने अपने आप को नौ में विभाजित किया और नौ कन्याओं की उत्पत्ति हुई देवहूति से, उनमें से एक अनुसूया भी है। इन नौ कन्याओं को नौ ऋषियों से विवाह हुआ, इसका वर्णन भी बहुत सुंदर है। आज कर्दम कहते हैं अब मैं जाता हूं, देवहूति कहते ये तो पुत्रियां हैं, अपने घर घर जाएंगी शादी के बाद, मैं किसके पास रहूंगी। अब तो कर्दम को याद आया कि भगवान ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आऊंगा। तो यहां कर्दम और मनु, सॉरी कर्दम और देवहूति के घर में भगवान कपिल देव का प्रकट्य होता है। पहले मनु के हृदय में कपिल देव आए, सॉरी कर्दम के हृदय में कपिल देव आए, फिर कर्दम के हृदय से कपिल देव देवहूति के हृदय में गए, ऐसे लिखा है भागवत में। और उस वक्त ब्रह्मा जी आया और ब्रह्मा जी ने कहा कर्दम देवहूति आपके घर में भगवान प्रकट होने वाले हैं, आप सावधानी से उसके स्वागत की तैयारी कीजिए। और जाते हुए कहा ब्रह्मा जी ने कि आपकी नौ कन्या है ना, इन ऋषियों को नाम लेके कहा, अंगिरा को ये देना, पुलह को ये देना, इन ऋषियों को अपनी कन्या का विवाह करके दे दो। समय आने के ऊपर कपिल देव का प्रकट्य हुआ, सोने के बाल हैं कपिल देव के, सुंदर शरीर है, और कपिल देव का प्रकट हुआ, बड़ा आनंद हुआ। लेकिन कर्दम ने पिताजी अपने बेटे को प्रणाम किया, कहा अब मैं जाता हूं संन्यास लेकर और आत्मचिंतन के लिए। कर्दम और ध्रुव महाराज भाव भक्ति के स्तर के ऊपर नहीं है, अर्थार्थी भक्तों में, अभी संसार का एक को धन चाहिए एक को विवाह चाहिए था, तो वो उनका स्तर अभी भाव भक्ति का नहीं है। तो भगवान का लालन पोषण पालन नहीं किया बचपन में कर्दम ने। कर्दम जाने से पहले फिर थोड़ा संकोच कर रहे थे, तब कपिल देव ने कहा पिताजी आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा, और आप माता का चिंतन मत कीजिए, मैं इसको दिव्य ज्ञान दूंगा और इसका मैं देखभाल करूंगा। कर्दम चले गए। थोड़े दिनों के बाद कपिल देव बड़े हुए, देवहूति हाथ जोड़ के कहती है बेटा मेरा इतना बड़ा योगी पति था जिसने भगवान का दर्शन किया था, इतना बड़ा वैभव था, लेकिन मैं इतनी भोग में लिप्त थी कि उनका लाभ नहीं ले पाई। बेटा आप मुझे भौतिक जगत से मुक्त होने का रास्ता बताओ। तो स्त्री होते हुए भगवत ज्ञान और शुद्ध भक्ति की प्राप्ति देवहूति ने की है, ये इस बात का उदाहरण है कि किसी को भी भगवान की प्राप्ति करने में कोई बाधा नहीं है। ये स्त्री होते हुए भगवान से साक्षात दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया है और भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया है। ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है दुनिया के लिए कि स्त्री भगवान का शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकती है और भगवान साक्षात स्वयं दे रहे हैं। देवहूति को पहले भगवान ने ध्यान करने की पद्धति बताई, ध्यान में भगवान विष्णु लिखे गए, विष्णु का पूरा अंदर स्वरूप बताया है, सांवला है, पीला पीतांबर है, कौत्सव मणि डाली हुई है, श्रीवत्स का चिन्ह है। श्रीवत्स चिन्ह किसको बोलते हैं? भगवान विष्णु की छाती के ऊपर लक्ष्मी का निशान है, गोल्डन टफ्ट ऑफ हेयर है, वो लक्ष्मी का स्थान है, उसको श्रीवत्स चिन्ह बोलते हैं, श्री लक्ष्मी का चिन्ह है। तो वो उसका वर्णन है, उसको चरणों से ध्यान शुरू करना चाहिए और चरणों के बाद ये भगवान का दर्शन भी जवाब करते हैं ना, ये कपिल देव का शिक्षा है कि चरणों से घुटनों तक, फिर नाभि कमल का दर्शन करना चाहिए, फिर छाती में बनमाला को देखना चाहिए, फिर कंठ के अंदर माला देखना चाहिए, फिर भुजाएं देखनी चाहिए, फिर मुखमंडल देखना चाहिए, ये देखने की प्रक्रिया है। तब देवहूति पूछती है ये जन्म मृत्यु संसार में लोग फंसा हुआ कैसे है, और इसका वर्णन कपिल देव करते हैं कि बच्चा कैसे गर्भ में आता है, उल्टा लटका हुआ होता है, 100 जन्म उसको 7 महीने तक आते हुए अपने याद आते हैं, हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मैं बाहर जाके आपका भक्त बनूंगा, और अंदर बहुत अंधेरे में चारों ओर से मलमूत्र के बीच में पड़ा होता है, पैकेट में बंधा हुआ, लेकिन जैसे बाहर आता है माया का ऐसा प्रभाव होता है सब कुछ भूल जाता है, उसके बस में कुछ नहीं है, जहां डाल दो वहां पड़े रहा, बेचारे को जिस बिस्तर पे डालो अगर उसके अंदर कोई मच्छर काटेगा तो हाथ भी हिला नहीं सकता है, इतना वो डिपेंडेंट है। और फिर नहीं चाहते हुए खेलना चाहता है, माता पिता जबरदस्ती पढ़ाने के लिए भेजते हैं, कपिल देव बोलता है बच्चा खेलना चाहता है, माता पिता जरूर जबरदस्ती किसी स्कूल में, उसका इच्छा नहीं होते फिर भेजते हैं, लेकिन जैसे बड़ा होता है तो फिर वापस काम भोग में और अहंकार में लिप्त हो जाता है, बड़ा परिश्रम करता है, शादी करता है, बंदर की तरह नाचता है, पैसा कमाता है, और पैसा कमाने के बाद घर वाले उसको अपने घर से बाहर खटिया में डाल देते। जो घर वो बनाता है बड़ी मेहनत करके बुढ़ापे में, उस घर में उसको नहीं रहने देते, उससे बाहर उसको खटिया में डाल देते, और फिर भी वो वहां से जाने को तैयार नहीं होता है। कुत्ते की तरह लिखा है कि कुत्ते की तरह बाहर टुकड़ों के ऊपर पलता रहता है। ये इस माया के जगत के अंदर लोगों की गति होती है। तब देवहूति कहती है, बेटा आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, भगवान का नाम जो उच्चारण करता है वो चाहे चंडाल हो चाहे कुत्ता खाने वाला है, तो भी समझना चाहिए कि इसने बहुत बड़ा तप और यज्ञ कर लिया है। आज मेरा हृदय प्रसन्न हो गया, आपकी शिक्षा से मैं संतुष्ट हुई, और ये साधुओं के संग से ही शिक्षा प्राप्त होती है। और उस वक्त कपिल देव ने कहा, माता मेरे को आज्ञा दो। कपिल देव चले गए गंगा सागर, जहां गंगा जाके सागर में मिलती है। सागर ने कपिल देव को स्थान दिया, आज भी कपिल देव वहां रह रहे हैं। सिद्धानाम कपिल अस्मि, कपिल सिद्ध मुनियों में एक कपिल मुनि है जो भी चिरजीवी आज भी रह रहा है। और यहां माता देवहूति इतना सारा वैभव भोग, वो महल था, विद्याधर स्त्रियां थी, लेकिन आज भोग से निवृत्त हो गई और शिक्षा के अनुसार भगवान का ध्यान करने लगी। और भागवत में लिखा है, फिर भी उसका शरीर कमजोर नहीं हुआ, वो शरीर में अच्छी खासी तकड़ी भारी भरकम थी। उसका कारण यह था कि बड़ी प्रसन्नचित्त थी। जो प्रसन्नचित्त होते हैं उनका शरीर प्लेजेंटली प्लम्प होता है। और यहां तीन स्कंद, तीसरा स्कंद समाप्त होता है। ये 33 अध्यायों का है, 33 चैप्टर्स हैं, और 33 ही मुख्य देवता होते हैं सृष्टि करने के लिए, और प्रकृति के भी 28 तत्व, 4 बीज और 1 काल, ये भी 33 होते हैं। तो 33 अध्यायों में सृष्टि का वर्णन है। समय पूरा हो गया, चौथा स्कंद कल करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद।